गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण में मैं हूं अतहर सईद आपके साथ। उषा, तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हमारी फोन लाइन पर जुड़ेंगे वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश राव। राकेश का हम बहुत स्वागत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत की शीतल देवी को विश्व तीरंदाजी ने वर्ष 2025 का सर्वश्रेष्ठ पैरा तीरंदाज चुना। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल लेवल 1 में भारत के प्रमोद भगत ने 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक हासिल किए। और एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में प्रीति पवार और दीपक ने जीत दर्ज करते हुए भारत के अभियान की सकारात्मक शुरुआत की। शुरुआत करेंगे शीतल देवी को विश्व तीरंदाजी में सर्वश्रेष्ठ पैरा तीरंदाज चुना गया है इस खबर के साथ। भारत की शीतल देवी को विश्व तीरंदाजी ने वर्ष 2025 का सर्वश्रेष्ठ पैरा तीरंदाज चुना है। जम्मू कश्मीर की 19 वर्षीय शीतल देवी पिछले साल दक्षिण कोरिया के ग्वांगझू में आयोजित विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में महिला कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली और एकमात्र बिना बाजू वाली तीरंदाज बनी। उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में महिला टीम का रजत और मिक्स्ड टीम का कांस्य पदक भी जीता। शीतल ने पेरिस पैरालंपिक्स में मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य, एशियाई पैरा गेम्स 2022 और एशियाई चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक अपने नाम किया है। और ब्यूरो के साथ हमारे सहयोगी आनंद पाठक।
वर्ष 2011 में शुरू किए गए विश्व तीरंदाजी पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीरंदाजी में उत्कृष्टता और योगदान को सम्मानित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। पुरुष वर्ग में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज तुर्की के एमिर कान हैनी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ युवा तीरंदाज का पुरस्कार फ्रांस के बैप्टिस्ट एडिस को, जबकि सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार कोरिया की रिकर्व पुरुष टीम ने जीता है। शीतल देवी वर्ष 2025 में बीबीसी इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय तीरंदाज बनी। ये सम्मान उन्हें पेरिस 2024 पैरालंपिक गेम्स में राकेश कुमार के साथ मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने के बाद मिला। वर्ष 2024 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अपने करियर में एक और माइलस्टोन जोड़ते हुए शीतल देवी ने दिसंबर में इतिहास रचा। उन्हें जिद्दा में होने वाले एशिया कप के लिए भारत की एबल बॉडीड कंपाउंड आर्चरी टीम में चुना गया है, जो उनके असाधारण कौशल और बहुमुखी प्रतिभा को और अधिक प्रदर्शित करता है। आनंद पाठक, स्पोर्ट्स कैन।
और अब कोशिश करेंगे कि हमारे जो विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं उनसे। राकेश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? राकेश जी से निश्चित रूप से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। आईपीएल क्रिकेट में आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से हो रहा है। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 11वें ओवर में 6 विकेट पर 74 रन बना लिए हैं। संजू सैमसन ने 6 रन बनाकर आउट हुए। ऋतु राज गायकवाड़ 6 रन, आयुष शून्य पर आउट हुए। मैथ्यू शॉर्ट 2 रन बनाकर आउट हुए। सरफराज खान 17 रन बनाकर और शिवम दुबे 6 रन बनाकर आउट हुए। और अब हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं, राकेश राव। राकेश राव, आपका बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो।
बहुत बहुत शुक्रिया।
पहला सवाल तो यही है कि थोड़ा विलंब से हमारे साथ आपका संपर्क हुआ है, तो आईपीएल के आज के मैच के बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज के मैच में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का जो निर्णय लिया, उसका कितना लाभ आपको मिलता नजर आ रहा है, जबकि अभी जो स्कोर है 6 विकेट खोने के बाद 74 रन है।
देखिए, टॉस जीतने का फायदा तो मिला है और गेंदबाजों ने बेहद उसका जो फायदा उठा सकते थे जितना फायदा उठा सकते थे टीम में, और 6 विकेट जो है ऊपर की 6 विकेटें गिर चुकी हैं और ये टीम, क्योंकि देखिए सीएसके की टीम हम जैसे जानते हैं कि थोड़ा मतलब उनका रेपुटेशन अपनी जगह है और वो टीम कभी भी वापसी कर सकती है, लेकिन अगर आप टॉस जीत के पहले बैटिंग करवाते हैं और आपको इतना बड़ा एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि देखिए T20 में नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि जब तक कि आपका टॉप ऑर्डर जो पहले 3 बल्लेबाज हैं उसमें से एक और मिडिल ऑर्डर में से भी अगर एक आदमी एक कोई भी बल्लेबाज टिक के खेलता है तो 20 ओवर में 140-150 रन का टोटल लग जाता है
जी।
क्योंकि हम मान के चलते हैं कि इतना टोटल में आप दिल्ली जैसे इंडिया में कुछ कुछ जगह पे आप फाइटिंग टोटल मानते हैं आप. अभी जैसे अगर आप उसी चीज को बैंगलोर में देखेंगे या वानखेड़े में देखेंगे तो हम 200 को भी सेफ नहीं मानते. तो यहाँ पे अभी बिल्कुल दिख रहा है कि जो राजस्थान रॉयल्स है उसका पल्ला भारी है और कोई कमबैक हो ये भी थोड़ा मतलब डिफिकल्टी लग रहा है क्योंकि
शीर्ष बल्लेबाजों की बात करें तो राकेश देखिए संजू सैमसन 6 रन बनाकर मात्र आउट हुए. ऋतु राजपूत गायकवाड़ भी 6 रन का योगदान दे पाए. आयुष ने कोई रन नहीं बनाया. मैथ्यू शॉर्ट भी 2 रन बनाकर आउट हुए. अलबत्ता सरफराज ने 17 रन जरूर बनाए और शिवम दुबे भी 6 रन बनाकर आउट हुए. तो ऐसे में आप कितने टारगेट कितने लक्ष्य की आप अपेक्षा करते हैं?
देखिए क्योंकि ओवर कोई बहुत ज्यादा नहीं बचे हैं. मैं उनका रन रेट भी कोई 7 के आसपास चल रहा था अभी तो 7 में अगर आप मान के चलिए क्योंकि बल्लेबाज नहीं है वो ऑल आउट नहीं होना चाहेंगे तो मैं देखता हूं कि 125 और 140 के बीच में भी अगर टोटल लगता है तो ये एक फाइटिंग टोटल ही बोलेंगे हम इसको. लेकिन उसके बावजूद मैं यही मानूंगा कि इस वक्त अगर 140 का टारगेट भी मिलता है 150 का ज्यादा से ज्यादा वो भी इस विकेट पे चेज हो सकता है क्योंकि गुवाहाटी का विकेट है. हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे रन बहुत तेजी से नहीं भी बनते हैं लेकिन ये जरूर है कि ये इतना कम टोटल भी ना हो कि ऑपोजिशन में कोई दबाव ही ना हो.
मैदान गीला आज नजर आया और मैदान गीला होने के कारण आज टॉस में भी थोड़ी देरी हुई तो इसका लाभ कितना और लाभ मिलेगा और किसको मिलने की उम्मीद आपको लगती है?
देखिए जितना लाभ मिलना था फास्ट बॉलर्स को वो मिल चुका है और अब जितना उसपे जितना भी गेम खेला जाएगा और जितने की यू नो लाइट की भी एक अपनी हीट होती है तो जितना वो सूखता जाएगा उतना सेकंड जो भी बल्लेबाज की जो भी आएंगे चाहे वो टॉप ऑर्डर आए मिडिल ऑर्डर आए उनको उसका फायदा तो मिलेगा.
चलिए बढ़ते हैं आगे. आईपीएल क्रिकेट 2026 के चौथे मुकाबले में कल पंजाब किंग्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा. दोनों टीमों के बीच ये मैच मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. एक रिपोर्ट.
आईपीएल में पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच अब तक कुल 6 मुकाबले खेले गए हैं. इनमें से पंजाब किंग्स ने 3 मैच जीते हैं जबकि 3 में गुजरात को जीत मिली है. आईपीएल 2025 में इन दोनों टीमों की भिड़ंत एक बार हुई थी जहां पंजाब ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गुजरात को 11 रनों से हराया था. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब ने पिछले सीजन फाइनल तक का सफर तय किया था. हालांकि खिताबी मुकाबले में टीम को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी के खिलाफ हार झेलनी पड़ी थी. पंजाब की टीम इस सीजन में भी काफी मजबूत दिखाई दे रही है. दूसरी ओर गुजरात टाइटंस को इस सीजन में भी साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल से बल्ले से बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद होगी. सुदर्शन पिछले सीजन सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे और उन्होंने 15 मुकाबलों में 759 जबकि गिल ने 650 रन बनाए थे. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कल के मैच में कौन सी टीम बाजी मारती है. वैष्णवी स्पोर्ट्स कैन.
राकेश कल पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगी. किसका पलड़ा आपको भारी नजर आता है? हालांकि दोनों ही टीमों ने बराबर मैच जीते हैं अब तक यानी 3-3 मैच से दोनों बराबर रहे हैं तो कल किसका पलड़ा भारी आपको नजर आता है भारी?
देखिए पंजाब होम टीम है उसका उनको एडवांटेज तो खैर मिलेगा लेकिन मैं जीटी को बहुत अच्छी टीम मानता हूँ. एक जैसे मैं ये मानता हूँ कि वेल राउंडेड टीम है. रेपुटेशन के हिसाब से देखें तो पिछले साल के वो जो पंजाब की टीम थी फाइनल खेली है लेकिन उस टीम को मैं उसको इन दोनों के जो कंपैरिजन में मैं जीटी को ज्यादा स्ट्रांग मानता हूँ और क्योंकि पहला मैच है. देखिए गलतियां दोनों तरफ से होंगी थोड़े बहुत नर्व्स होते हैं पहले मैच से पहले तो वो दोनों को डील करना पड़ेगा उससे क्योंकि देखिए कैंपेन जब आप ओपन करते हैं तो जैसे वो एक सेटल होने वाली बात होती है इसीलिए हम ये कहते हैं कि जब तक हर टीम क्योंकि 14-14 मैच खेल लें सबको 4 मैच में खेल लें हम ये कहना मुश्किल हो जाता है कि साहब कौन सी टीम सेटल हो रही है क्योंकि आपको अपना जो सही कॉम्बिनेशन है ऑक्शन के बाद और जो भी आपकी स्ट्रेटजी लगती है उस सब के बाद और जो इम्पैक्ट सबका जो रोल है उसको एक टीम को पूरी तरह से उसके ऊपर जो एक नियंत्रण होता है कि हम कितना कंट्रोल कर सकते हैं मैच को एक इम्पैक्ट सबके साथ ये सब चीजें आजकल स्ट्रैटेजी ज्यादा हो गई है. टीम सिलेक्शन से भी ज्यादा स्ट्रैटेजी ज्यादा काम करती है तो स्ट्रैटेजी को एक लय एक पूरी तरह से सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन जैसे आपने पूछा मुझे कि कल का जो मुझे लग रहा है मैं जीटी को मैं फेवरेट मानता हूँ.
लेकिन किन खिलाड़ियों पर अगर संक्षिप्त में पूछें तो पंजाब के किन खिलाड़ियों पर नजर रहेगी और गुजरात को अपने किन खिलाड़ियों पर भरोसा होगा?
देखिए मेरे ख्याल से ये जो गेम होने वाला है ये बहुत सीधा सीधा एक मुकाबला होने वाला है कि जीटी के बल्लेबाज और पंजाब के गेंदबाजों के बीच में जहां पे दोनों में से अगर मान लीजिए कि पंजाब की गेंदबाजी अच्छी रही तो वो मैच जीत जाएंगे और अगर जो जीटी की बल्लेबाजी अच्छी रही तो वो जीत जाएंगे। बाकी दोनों चीजें कांस्टेंट हैं, जैसे अगर आप कहें कि बैटिंग के टर्म्स में अगर आप देखें कि पंजाब की टॉप ऑर्डर अच्छा ही है उनका, लास्ट टाइम जिन्होंने उनको फाइनल तक पहुंचाया, लेकिन ओवरऑल मैं तब भी मानता हूं कि जीटी हालांकि यू नो विजिटिंग टीम है, होम टीम के अगेंस्ट खेल रही है, मेरे ख्याल से वो ज्यादा सेटल्ड है। अब जैसे शुभमन पंजाब के ही हैं, बहुत क्रिकेट खेले हैं, लेकिन ये जो मुल्लन यू नो का जो स्टेडियम है, मुल्लनपुर का जो स्टेडियम है जो कि हम न्यू चंडीगढ़ मान के चलते हैं जिसको, वहां पे बहुत सारे टाइम से भी मैच जो अभी दो सीजन से शुरू हुए हैं मैचेस, इंटरनेशनल मैचेस उनको दिए जाते हैं कि वो जरा सेटल हो जाए। बहुत खूबसूरत स्टेडियम है, पीसीए की तरह नहीं है, पीसीए का जो नेचर था वो इस स्टेडियम से थोड़ा अलग है, लेकिन शुभमन यहाँ खेले हुए हैं थोड़े बहुत।
चलिए आगे बढ़ते हैं, बैडमिंटन की बात करेंगे। भारत के पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत ने टोलेडो में आयोजित स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2026 लेवल 1 में 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते हैं। प्रमोद भगत ने मनीषा रामदास के साथ मिलकर मिश्रित युगल SL3 SU5 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। नीतीश कुमार ने पुरुष एकल SL3 में स्वर्ण पदक जीता, जबकि मानसी जोशी और थुलसिमथी मुरगेसन ने महिला युगल SL3 SU5 में स्वर्ण पदक हासिल किया। थुलसिमथी मुरगेसन ने महिला एकल SU5 में भी स्वर्ण पदक जीतकर एक स्वर्ण पदक में नाम किया, जबकि मनीषा रामदास ने इसी स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एशियाई खेलों की कांस्य पदक विजेता प्रीति पवार और दीपक ने अलग अलग जीत दर्ज करते हुए आज भारत के अभियान की सकारात्मक शुरुआत की। महिलाओं के 54 किलोग्राम वर्ग में प्रीति ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कजाकिस्तान की एलिना बजारोवा को 5-0 के सर्वसम्मत निर्णय से हराया। प्रीति की इस जीत ने उनके अभियान की मजबूत शुरुआत की। पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में एशियाई युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 के कांस्य पदक विजेता दीपक ने उज्बेकिस्तान के खवासेक असदुल्ला येव के खिलाफ कड़े मुकाबले में 3-2 से जीत हासिल की। और एक और खबर, छत्तीसगढ़ में चल रहे खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स के छठे दिन आज रायपुर में हॉकी और फुटबॉल मैच हुए, जबकि अंबिकापुर में कुश्ती प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। जगदलपुर में भी आज से एथलेटिक्स स्पर्धाएं शुरू हो गई हैं। विस्तृत ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
महिला हॉकी में मिजोरम और ओडिशा फाइनल में पहुंच गई है। पहले सेमीफाइनल में मिजोरम ने कड़े मुकाबले में झारखंड को 3-2 से हराया। दूसरे सेमीफाइनल में ओडिशा ने मध्य प्रदेश को 8-0 से मात दी। पुरुष हॉकी में झारखंड ने पहले सेमीफाइनल में मध्य प्रदेश को 8-1 से हराकर फाइनल में जगह पक्की कर ली। जगदलपुर में एथलेटिक्स में महाराष्ट्र के गोविंद प्रकाश पाडेकर ने पुरुषों की 5,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अरुणाचल प्रदेश की नेडी नागी ने महिलाओं की स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। अंबिकापुर ने कुश्ती में झारखंड की नेहा उरांव और कर्नाटक की मनीषा सिद्धि ने क्रमशः महिला 53 किलोग्राम और 76 किलोग्राम वर्गों में स्वर्ण पदक जीते। पुरुषों की स्पर्धाओं में बिहार के मुलायम खरवार ने 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर बिहार का पहला स्वर्ण पदक हासिल किया। जम्मू और कश्मीर के हमाम हुसैन ने 97 किलोग्राम, कर्नाटक के रोहन डोड्डामणि ने 60 किलोग्राम और हिमाचल प्रदेश के पीयूष गुर्जर ने 87 किलोग्राम वर्ग में भी स्वर्ण पदक जीते। पुरुष फुटबॉल लीग मैचों में ग्रुप ए में पश्चिम बंगाल ने तमिलनाडु को 9-0 से हराया, जबकि ग्रुप बी में गोवा ने मिजोरम को 4-1 से हराया। कर्नाटक 17 स्वर्ण और 6 रजत पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर बना हुआ है। ओडिशा 9 स्वर्ण और 4 रजत पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 6 स्वर्ण और 1 रजत पदक के साथ तीसरे स्थान पर है।
और श्रोताओ, अब समय चला आपसे विदा लेने का, कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। राकेश, आपने तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया।
और श्रोताओ, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम के साथ अतहर सईद को अनुमति दीजिए। नमस्कार।